ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये जो चंदन यात्रा है उसकी शुरुआत हुई। तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, मया सक्त मनः पार्थ, कि हे अर्जुन मुझ में आपको आसक्त होना होगा। और आसक्त होने के लिए भगवान कहते हैं कि आपको ध्यान से मेरे बारे में सुनना होगा। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या स्थान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जब हम बारंबार उस व्यक्ति को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तो किसी भी चीज के प्रति लगाव या प्रेम की भावना का उदय करना है तो उसके लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। बारंबार आईज आंखों के द्वारा देखना और दूसरा कानों के द्वारा सुनना। तो इन दो चीजों के द्वारा हम किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या स्थान के प्रति जो हमारे हृदय की आसक्ति है, प्रेम या लगाव की भावना है, वो जागृत करते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रूप गोस्वामी आदि को उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति हर एक जीव के हृदय में स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन वो प्रेम की भावना जागृत कैसे की जा सकती है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। व्यक्ति को भगवान के बारे में क्या करना होगा? सुनना होगा। दो चीजें हैं, या तो भगवान के प्रति हम प्रेम की भावना का विकास करें या फिर इस संसार के व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति करें। किसी ना किसी से हमें प्रेम करना ही है। इस संसार में सुख का मतलब क्या है? सुख का मतलब है हम अपने जीवन में दो चीजें हमेशा चाहते हैं, उनकी चाह करते हैं। एक है हम हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिससे हम प्राण से भी अधिक प्रेम करना चाहते हैं। कितना प्रेम करना चाहते हैं? प्राण से भी अधिक। और ऐसा व्यक्ति हम अपने जीवन में चाहते हैं जो हमसे प्राण से भी अधिक क्या करे? प्रेम करे। और यही वास्तव में सुख है। लेकिन इस भौतिक संसार की जो सच्ची चीज है कि ये दो चीजें प्राप्त करना इस संसार में असंभव है। वास्तव में इस दो चीजों के द्वारा हम अपने जीवन में भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करे, और हम भी उससे सर्वाधिक प्रेम करें, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है इस संसार में? चाणक्य पंडित कहते हैं, इस संसार का जो प्रेम है वो केवल स्वार्थ पर निर्भर है। इवन भागवतम में वर्णन आता है कि एक वृक्ष के ऊपर तब तक पंछी निवास करते हैं जब तक उसके ऊपर फल है, और कोई व्यक्ति है उसके पास जब तक धन पोजीशन पद आदि है तब तक उसके पास मित्र उसके आसपास मंडराते रहते हैं, रिलेटिव उसके घर आते रहेंगे। जब ये सारी चीजें चली जाती हैं तो हर एक व्यक्ति उससे अलग हो जाता है। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि भार्या च विभवा क्षय, इवन जो अपनी पत्नी है वो भी हमसे दूर हो जाती है जब हमारे पास धन की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि इस संसार के जो संबंध है प्रेम आदि है वो किसी ना किसी स्वार्थ पर टिके हुए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि प्रेम के जो विषय है वो कौन है, भगवान है। अब हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार से जाने या अनजाने में हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, और ऐसे सेवा या उनको उनके प्रति प्रेम की भावना में हम आनंद अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही एक महान भक्त हुए हैं जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। क्या नाम था? माधवेंद्रपुरी। तो लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कृष्ण अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। इस तरफ जो दो ऐसे खड़े हुए हैं जो नए लोग हैं कुछ, तो उनमें से एक कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, कृष्ण और बलराम जो कलयुग में 520 साल पहले लगभग अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के बाद बंगाल से वो ओडिशा जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में कौन से विग्रह निवास करते हैं? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो यहाँ तीनों धाम हैं, जगन्नाथपुरी भी है, बीच में वृंदावन है, और इस तरफ क्या है, नवद्वीप मायापुर जहाँ चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब ओडिशा की ओर जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो जाते जाते ओडिशा जैसे ही शुरू होता है बंगाल से, एक स्थान में पहुंचे, एक टाउन में, उस गांव का नाम था रेमुना। क्या नाम था? तो ये रेमुना एक विशेष स्थान है जहां भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर है और वहां भगवान निवास करते हैं जिनका नाम है गोपीनाथ। तो भगवान गोपीनाथ के रूप में वहां निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस रेमुना गांव में पहुंचे टाउन में और वहां मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो जाकर भगवान को प्रणाम करने लगे। अभी हम मंदिर आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करना हमारे लिए भारी लगता है, व्यक्ति सोचता है क्यों झुकूं मैं भगवान के सामने। भागवतम कहता है ये सर, जब यमराज यम दूतों को कहते हैं जिस व्यक्ति का सर भगवान के आगे नहीं झुकता, जिस व्यक्ति की जीवा भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती, जिस व्यक्ति के हाथ भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं होते, जिस व्यक्ति के पांव वृंदावन आदि धामों में चलने में इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को है यमदूत कहां ले आओ, मेरे धाम लेके आओ और नरक लेके आओ। तो इसलिए अब भक्ति का मतलब है अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना, कानों के द्वारा भगवान के बारे में सुनना, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करना, जीवा के द्वारा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कृष्ण के बारे में बोलना, उनके नामों का उच्चारण करना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही भगवान ने एक विशेष मुकुट पहना हुआ था पुष्पों का, वो मुकुट चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गिर जाता है। और चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, भगवान के सौंदर्य को देखने लगते हैं। कृष्ण सबसे अधिक सौंदर्यवान है। हाँ, तो ऐसे भगवान का दर्शन कर ही रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि आज इस गांव में मुझे रुकना होगा, जिस गांव का नाम था रेमुना। और ये गोपीनाथ के जो विग्रह है, जब भगवान राम सीता देवी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तो एक दिन भगवान राम और सीता एक गुफा में थे, और वह भगवान राम ने दूर से कुछ देखा और जोर से हंसने लगे। तो सीता देवी ने कहा, ओ राम, आप क्यों इतना जोर से हंस रहे हैं? तो भगवान राम कहते हैं कि देखो, आगे मैं देख रहा हूं कि कुछ ग्वाल बाल गव्वे चरा रहे हैं, और इस त्रेता युग के बाद आने वाले द्वापर में मैं भी क्या करने वाला हूँ, गाय चराने वाला हूँ। वृंदावन में मैं भी एक ग्वाल बाल के रूप में आने वाला हूँ। तो सीता देवी ने कहा, आपका रूप कैसे होगा? उस रूप को मैं देखना चाहते हूँ। तो भगवान राम अपना बाण निकालते हैं, और बाण के द्वारा उसी क्षण एक सुंदर सा मूर्ति या विग्रह बनाते हैं, और वह विग्रह कौन से थे? गोपीनाथ के थे। तो वो सीता देवी को वो देते हैं। तो सीता देवी भगवान कृष्ण के विग्रह की क्या कर रही थी? आराधना, पूजा आदि कर रही थी। तो फिर कालांतर में वो वनवास में आगे भ्रमण करने लगे, तो चित्रकूट में वो विग्रह रहे। फिर ओडिशा के राजा ने जब कोणार्क मंदिर आदि जब स्थापित किया, तो वो इनविटेशन देने के लिए चित्रकूट वहां गए, तो उन्होंने गोपीनाथ का दर्शन किया, और उन्होंने कहा कि गोपीनाथ, आप मेरे राज्य में चलो, हम मंदिर आते हैं भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं। हम मंदिर क्यों आते हैं? भगवान को कहते हैं, भगवान आप यहाँ ही ठीक हो, मंदिर मत आ, घर मत आना, घर आओगे तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं दुर्योधन की क्या है? भावना। दो लोग मंदिर गए थे, अर्जुन गए थे, और कौन गए थे? दुर्योधन भी गए थे। महाभारत के युद्ध के पूर्व द्वारका में कि अर्जुन और दुर्योधन ने सोचा कि महाभारत के युद्ध में अलग अलग राजाओं को हमारे पक्ष में हमने ले लिया है, लेकिन अभी द्वारकाधीश कृष्ण बचे हैं। तो दुर्योधन जाकर पहुंच जाता है अर्जुन से पहले, जब कृष्ण सो ही रहे थे, और वो जाकर भगवान के सर के पास बैठता है। अर्जुन पहुंचते ही भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान जैसे उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं। भगवान को अपने भक्तों को देखने में आनंद अनुभव होता है, अभक्तों को देखना नहीं चाहते। तो जैसे भगवान उठे तो दुर्योधन ने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे देखो। भगवान ने कहा, अच्छा आप तो मेरे सर में बैठे हो। तो फिर भगवान ने पूछा, बताइए आपके आगमन, आप क्यों आए हो? तो उन्होंने अपना कारण बताया। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं, तो आप दोनों को, दोनों में से एक आपको चूज करना होगा। तो दुर्योधन ने सोचा, भगवान ने कहा मैं भी रहूंगा, लेकिन मैं कोई शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन ने सोचा, ये कृष्ण किसी काम के नहीं है, इससे अच्छा क्या है, नारायणी सेना ले लो बस। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अस्त्र उठाओ या नहीं उठाओ, आप चाहिए हमें, ये पांडवों की भावना है। तो दुर्योधन भगवान की सेना आगे लेकर चले जाते हैं। तो उसका मतलब है कि हम भी आते हैं मंदिर, और दुर्योधन की तरह भगवान के पास कहते कि भगवान मुझे क्या दे दो? धन दे दो, पत्नी दे दो, सुंदर पति दे दो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व करो। ये सब किसकी भावना है? दुर्योधन की भावना है। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि भगवान मैं आपको मेरे जीवन में चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आ जाइए। अब वो हम कभी नहीं चाहते। और वास्तव में पांडवों का जीवन क्या है? उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को प्राथमिकता दी है। हम सबसे आखिर किसी के बारे में सोचते हैं तो वो किसके बारे में? भगवान के बारे में। सबसे पहले बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन वास्तव में पांडव इसलिए ग्लोरियस है इस संसार में क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम अपने जीवन में किसकी चाह की? कृष्ण की चाह की। तो उसी प्रकार से ये राजा लोग भी थे, उन्होंने भगवान को कहा गोपीनाथ आप मेरे राज्य में आओ, और फिर गोपीनाथ को लेकर वो ओरिसा आते हाथी के ऊपर। जब ओरिसा के उस गांव से गुजर रहे थे तो भगवान ने कहा मुझे आगे नहीं जाना है, इसी गांव में रहना है क्योंकि यहाँ का वातावरण बड़ा रमणीय है, यहाँ अलग अलग सरोवर है, जल है, जलाशय है, कुंड है, अलग अलग वृक्ष आदि है, तो भगवान वहां निवास करने लगे, इसलिए उस स्थान का नाम रेवना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उन भक्तों को कि मैं भगवान गोपीनाथ के बारे में आपको बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कि किस प्रकार से एक महान भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। तो जो माधवेंद्र पुरी एक ऐसे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक बार ये माधवेंद्र पुरी वृंदावन गए थे और अकेले भ्रमण करते थे, किसी को अपने साथ नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? उनको हमेशा लगता था कि किसी को अपने साथ रखूंगा तो वो भगवान के अलावा बाकी फालतू की बातें करते रहेगा, जिसके कारण मैं भगवान का स्मरण ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्मरण में बाधा हो जाएगी, इसलिए वो सोचते थे कि अकेले मुझे रहना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी अकेले ही एक वैरागी सन्यासी थे, अकेले अकेले भ्रमण करते करते एक बार वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में गोवर्धन गए। गोवर्धन में उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू किया। परिक्रमा करते करते वो एक स्थान है जिसका नाम है गोविंद कुंड। तो ऐसे गोविंद कुंड के पास वो आते हैं, गोविंद कुंड के किनारे में एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भगवान के नामों का जप करते हुए। कौन से नामों का जप कर रहे थे? हरे कृष्णा, सब बोलिए कृष्णा, हाथ ऊपर कीजिए सब, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड के किनारे वृक्ष के नीचे इस नाम का जप कर रहे थे। तो उसी समय एक 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 बालक आता है जिसके हाथ में एक घड़ा था जो दूध से भरा हुआ था। वो बालक आकर माधवेंद्र पुरी को कहता है कि ओ माधवेंद्र पुरी, तो ये दूध आपके लिए है। माधवेंद्र पुरी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और मैं इस वृक्ष के नीचे अकेला बैठा हूँ। तो उस बालक ने कहा कि हमारे इस गांव में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको मैं कभी भूखा नहीं रखता हूँ, उसे मैं हर चीज जो खाने की वस्तुएं हैं वो प्रदान करता हूँ। और अभी अभी इस गोविंद कुंड से उस स्त्रिया जल लेके गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप अकेले उस वृक्ष के नीचे बैठे हो इसलिए आपके लिए मैं दूध लेकर आया हूँ। तो उस बालक ने कहा जल्दी जल्दी इस दूध को पी लो और थोड़ी देर में मैं आऊंगा वापस इस मटके को ले जाने के लिए। तो वो बालक वहां से चला जाता है। तो माधवेंद्र पुरी उस मटके में दूध को पीते हैं और रात्रि हो जाती है, और उस वृक्ष के नीचे ही दूध को पीने के बाद हरिनाम का जप करते हैं और शेष रात्रि में उनको थोड़ी सी हल्की नींद आती है। उसी समय अचानक उनको एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में क्या देखते हैं कि जिस बालक ने उनको दूध दिया था वही बालक, बल्कि उस बालक को देखते ही वो उस बालक के प्रति आकर्षित हो गए थे, और वो बालक कोई और नहीं था, वो कौन थे? कृष्ण थे। क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने भक्तों का सदैव देखभाल करते हैं, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं अनन्यः चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है अर्जुन, उसकी देखभाल मैं पर्सनली करता हूँ, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, मैं फुलफिल करता हूँ, और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान का वचन है गीता में। तो भगवान स्वप्न में आते वो बालक और माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़कर स्वप्न में एक झाड़ियों में ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखो इस झाड़ियों में मैं हाँ दबा हुआ हो मेरा विग्रह, मुझे यहाँ से निकालो। हाँ मुस्लिमों के भय के कारण पुजारी ने क्या किया, मुझे जमीन के अंदर डाल दिया है, आप मुझे वहां से बाहर निकालो और गोवर्धन के ऊपर मेरी स्थापना करो। तो सुबह सुबह जैसे उठते हैं रोने लगते हैं माधवेंद्रपुरी। वो सोचते हैं कि देखो मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, जो मेरे लिए दूध लेकर आए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ, लेकिन व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है उसके पास जिसके द्वारा वो भगवान को देख सकता है। अपनी पलकों को वो देख नहीं सकता, आईलिड्स को, तो भगवान को क्या देख सकता है। तो फिर माधवेंद्र पुरी गांव के लोगों को ले आते हैं और उन झाड़ियों में से क्या करते हैं, भगवान के विग्रह को निकालते हैं। और भगवान के विग्रह इतने सुंदर थे, हाँ, जिनका नाम गोपाल था। क्या नाम था? गोपाल, गौओं की रक्षा करने वाले। तो ऐसे विग्रह को जैसे ही निकाला, वो बहुत भारी थे, बहुत सारे भक्त उठाकर गोपाल के विग्रह को ले जाते हैं और गोवर्धन के ऊपर जाकर उनकी स्थापना करते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी ने देखा कि भगवान के लिए कुछ सुव्यवस्थित अल्टर नहीं है, तो नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं और पीछे एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं जिसके ऊपर गोपाल को रखा जाता है। वही गोपाल के विग्रह आज कहाँ है? नाथ द्वारा में। आप कभी नाथ द्वारा राजस्थान में जाते हैं तो नाथ द्वारा में यही विग्रह वहां सेवा स्वीकार करते हैं श्रीनाथ जी के रूप में, जिनका नाम अभी श्रीनाथ जी है। तो ऐसे गोपाल की वहां स्थापना करते हैं और भगवान ने उनको कहा था कि मुझे इन झाड़ियों में रहा हूं मैं कई दिन अंदर जमीन के, तो मुझे बहुत गर्मी भी लगी हुई है, तो इसलिए आप मुझे क्या करो, गोविंद कुंड के जल से मुझे स्नान कराओ। माधवेंद्रपुरी ने जैसे विग्रह को रखा तो उन्होंने तुरंत ही भगवान को ऑयल लगाना, उनका मालिश आदि किया और 900 घड़े जल लाया जिसके द्वारा उनका अभिषेक किया। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने भगवान की सेवा को शुरू किया। और फिर उसी समय ब्रज के सारे लोगों को पता चला कि ब्रज के जो अधिकारी हैं गोपाल, जो कृष्ण हैं, वो प्रकट हो गए हैं। तो सारे वृंदावन के निवासी वहां आते हैं, अलग अलग भेंटे लेकर आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और कई प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के उपहार भगवान गोपाल को अर्पित किए जाते हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी बहुत अधिक आनंदित होते हैं इन सारी सेवाओं को देखकर। फिर एक दिन 2 साल बीतते हैं माधवेंद्रपुरी भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं, तो एक बार बंगाल से 2 ब्राह्मण आते हैं। माधवेंद्रपुरी उन ब्राह्मणों को गोपाल की सेवा में नियुक्त करते हैं। और ऐसे 2 साल बीतने के बाद माधवेंद्रपुरी को फिर से भगवान स्वप्न में आते हैं। स्वप्न में आकर भगवान कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या लग रहा है मुझे? गर्मी लग रही है। हाँ, भगवान सब प्रकार की चीजों को अनुभव करते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रतिमा नहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की ये मूर्तियां हैं, नहीं, ये साक्षात कौन है? कृष्ण है। हाँ, क्योंकि भगवान साक्षात इस विग्रह के रूप में बद्ध जीवों से सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे भगवान स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे बहुत अधिक गर्मी लग रही है माधवेंद्रपुरी, तुम क्या करो, मलय प्रदेश में जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। क्या लेके आओ? चंदन। तो भगवान स्वयं अपनी सेवा का आज्ञा देते हैं माधवेंद्रपुरी को। और ये मलय प्रदेश कहाँ था? माधवेंद्रपुरी ने कहा, भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कहा कि जगन्नाथपुरी जाओ ओडिशा और वहां से मेरे लिए चंदन लाओ। भगवान ये भी कह सकते थे कि अरे चलो नजदीक से चंदन लेके आओ दिल्ली से, इजी था, लेकिन नहीं, भगवान इसके द्वारा दिखाना चाहते थे कि मेरी सेवा के लिए मेरा जो भक्त है इस संसार के किसी भी कष्ट को सहन करने के लिए तत्पर है। मतलब भगवान का, भगवान के प्रति भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त का प्रेम कितना है, हाँ, मेरी सेवा के प्रति। इसलिए भक्त की पहचान किससे होती है? सेवा से होती है, हाँ। क्योंकि इस संसार में हम किसी ना किसी की सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन उस सेवा के द्वारा कभी भी हम संतुष्टि अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति मेरी थोड़ी भी सेवा करता है, उसकी मैं महान से महान भय से उसकी रक्षा करता हूं। भगवान कहते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं माधवेंद्र पुरी को, और कहां जाने के लिए? ओडिशा। 500 साल पहले आपको पैदल जाना है। इस संसार में हम भगवान के लिए सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। क्या, अरे कौन सीढ़ियां चढ़ेगा? दो बार चार बार आपको बोला जाए मंदिर में ऊपर जाओ कुछ सेवा करो, पांच बार ऊपर नीचे, हम कहेंगे क्यों? हाँ, तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा नहीं। हाँ, माधवेंद्र पुरी तुरंत वृंदावन से निकलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं ओडिशा के लिए। कई महीनों की, कई दिनों की लंबी यात्रा, धूप है, वर्षा है, सबको सहन करते हैं। किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए तुम्हारा सेवा या दुख है जत सही परम सुख। भगवान की सेवा में जो दुख भी है वो दुख महसूस नहीं होता। उस दुख में भी क्या छुपा हुआ है? एक विशेष आनंद छुपा हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद माधवेंद्र पुरी के समान ही श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण की सेवा की है। 70 साल की आयु में जिनके पास भारत में 40 रुपए थे, और उनके गुरु ने कहा, तुम अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हो, जाओ भारत की ये जो संस्कृति है, गीता भागवतम का प्रचार अमेरिका पाश्चात्य जगत में जाकर करो। लेकिन उनके पास कितने रुपए थे जाने के लिए? 40 रुपए। और वृद्ध अवस्था, वृद्ध आयु, और वहां कोई उनको जानने वाला पहचानने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए, भगवान पर पूर्ण रूप में विश्वास रखते हुए है उन्होंने भारत को छोड़ा। हम घर से बाहर निकलते 40 रुपए से कोई निकलता है बाहर? नहीं, अमेरिका निकले हैं। किसकी सेवा करने के लिए? कृष्ण की। हाँ, तो जब इस प्रकार से प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो वहां कोई उनका वेलकम करने वाला नहीं था, वहां उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। वहां एक वृक्ष के नीचे जाते थे, पेड़ के नीचे, और वहां जाकर एक करताल हाथ में लेकर क्या करते थे? कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जब अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने देखते ही, वहां की संस्कृति को देखते एक पोयम लिखा। उन्होंने कहा कि हे कृष्णा, आप मुझे इतना दूर लेके आए हो, यहाँ कौन आपके संदेश को सुनेगा? यहाँ के लोग रजोगुण तमोगुण में मस्त हैं, पागल हैं, हाँ, कोई आपके बारे में सुनना असंभव है। लेकिन मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन आप ही वास्तव में मेरे इस नाम को सार्थक कर सकते हो। आप मुझे इतना दूर लेके आए हो तो मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसा चाहे वैसे नचाओ। भक्त का मतलब है जो भगवान चाहे, जो भगवान की डिजायर हो, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए? भक्त का जीवन होना चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए अमेरिका पहुंचे तो फिर भगवान ने सारी सुव्यवस्था की। हाँ, 11 साल में प्रभुपाद ने 11 साल में पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर बनाए, हजारों भक्त बनाए, हजारों मात्रा में ग्रंथ छापे, और पूरे वर्ल्ड का 14 बार भ्रमण किया। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी भी जब ओडिशा के लिए जा रहे थे तो जाते जाते वो अद्वैत आचार्य के वहां गए शांतिपुर, उनको वहां उन्होंने दीक्षा प्रदान किया, और फिर उन्होंने ये रेमुना नाम के स्थान में पहुंचे। जहां गोपीनाथ के विग्रह है कृष्ण के। तो माधवेंद्रपुरी जब वहां मंदिर में पहुंचे, देखा बहुत सुंदर है गोपीनाथ। गोपीनाथ का मतलब जो गोपियों के नाथ है, स्वामी है। तो जब भगवान का दर्शन किया और मंदिर में जाते ही पता चला कि अरे यहाँ तो सब कुछ इतना भव्य है, भगवान के विग्रह को देख के लगा कि यहाँ भगवान की सबसे अच्छी सेवा होती है। तो उनको अपने वृंदावन के गोपाल का स्मरण आया। उन्होंने सोचा कि यहाँ इतनी अच्छी सेवा होती है, जरूर यहाँ भगवान के लिए सबसे अच्छे भोग लगाए जाते होंगे, हाँ अच्छे अच्छे व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते होंगे। तो फिर उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि बताओ यहाँ गोपीनाथ की जो विग्रह है उनको क्या क्या भोग लगाया जाता है। हम मंदिर आते तो कभी प्रश्न नहीं पूछते, मंदिर आते तो पूछना चाहिए हमें। तो जब वहां उन्होंने पूछा तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ गोपीनाथ को एक विशेष खीर भोग लगाई जाती है जिसका नाम क्या है, अमृत केले। क्या नाम है? अमृत केले, मीन्स अमृत के समान मधुर है, स्वीट है। तो ये अमृत केले जो पूरे विश्व में ऐसी खीर भगवान को कहां भोग में लगाए जाते। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा अरे ऐसी खीर भगवान को भोग लगाई जाती है, मैं तो वृंदावन वापस मेरे गोपाल की सेवा के लिए जाऊंगा तो उनके लिए भी ऐसी खीर बनाऊंगा, और यदि मुझे थोड़ा सा चखने को मिल जाए ताकि मैं भी उसी क्वालिटी की खीर घर वापस जाकर या वृंदावन वापस जाकर गोपाल को अर्पित कर सकता हूँ। मतलब जहां जहां भक्त जाता है वहां वहां भगवान की सेवा को और सीखना चाहता है, वापस जाकर और अच्छी सी सेवा करना चाहता है। तो माधवेंद्रपुरी जैसे ये सोच रहे थे कि मुझे थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाए, तो उसी समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कितना मैं नीच हूं, अभी तो भगवान को भोग लग ही रहा है और भगवान ने भोग स्वीकार भी नहीं किया और मेरे अंदर उसको खाने की वासना या इच्छा जागृत हो गई। वो अपने आप को बहुत नीच समझने लगे, तुच्छ समझने लगे, कोसने लगे अपने आप को, और वहां से उठकर प्रणाम करते हुए निकल पड़े बाहर कि ये उचित नहीं है। वो माधवेंद्रपुरी, क्योंकि उनका स्वभाव क्या था कि वो अपने लिए कभी किसी से मांगते नहीं थे, उनकी अजागर वृत्ति थी, अयाचक वृत्ति, वो अपने लिए किसी से मांगते नहीं थे, भूखे रह जाए लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए मांग सकते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहां से उठकर एक मार्केट में एक कोने में जाकर बैठते हैं वृक्ष के नीचे, और भगवान गोपीनाथ समझ लेते हैं खीर कौन खाना चाहता है, माधवेंद्रपुरी। तो जब उस पुजारी ने भगवान को भोग लगाया तो वहां गोपीनाथ के उस मंदिर में 12 बड़े बड़े घड़े भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो जब भोग लगाए संध्या के समय में, तो पुजारी ने सारे घड़े निकाल दिए और पुजारी मंदिर के पर्दे बंद करके सो गए। तो भगवान गोपीनाथ उस पुजारी के स्वप्न में आते हैं और कहते कि हे पुजारी उठो उठो। पुजारी सोचता क्या हो गया, जैसे कल कई लोग जब अर्थ पे क्या था भूकंप आया था इधर आया था नर्दा में, कुछ लोग सो रहे होंगे तो उनको पता नहीं चल रहा होगा, तो वैसे ही अचानक क्या हो गया। तो पुजारी भी सोचा कि क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो भगवान अल्टर से बोल रहे थे। तो भगवान ने कहा कि उठो उठो पुजारी, मैंने एक घड़ा अपने वस्त्रों के नीचे छुपा के रखा है, आओ उसे निकालो, और निकाल कर किसे दे दो, माधवेंद्रपुरी को जो मेरा भक्त है। तो ये पुजारी उठता है, स्नान आदि करके जब जाता है तो देखता है अरे कृष्ण के वस्त्र के पीछे एक खीर का घड़ा छुपा हुआ है। भगवान के वहां से वो निकालता है और निकाल कर बाहर निकलते हुए जोर जोर से वो पुजारी बोलने लगता है किसका नाम माधवेंद्रपुरी है, ओ माधवेंद्रपुरी आपके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है। क्या चुराया है भगवान ने, खीर चुराया है। ये है भगवान का विशेष प्रेम अपने भक्त के लिए, इसलिए भगवान को एक एक उपाधि से संबोधित किया जाता है। भक्त वत्सल। क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल। और यह हमेशा के लिए रहता है। ऐसे नहीं कि सत्ययुग में भगवान भक्त वत्सल है तो त्रेता युग में भगवान आसुर वत्सल हो जाएंगे, नहीं। सारे युगों में भगवान क्या रहते हैं? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मीन्स ये शब्द, ये उपाधि एक वत्स से आई है, बछड़े से। गाय और बछड़े का जो प्रेम का संबंध है उससे ये उपाधि आई है। जब बछड़े को गाय जन्म देती है तो वो बछड़ा पूरा भरा रहता है गंदगी से, ब्लड और सारी चीजों से। लेकिन जैसे जन्म देकर गाय के सामने होता है तो गाय कभी ये नहीं सोचती कि बहुत गंदा है। गाय क्या करती है? उसको चाटती रहती है, चाटते चाटते इतना सुंदर हो जाता है। और हम सब उस बछड़े का क्या करना चाहते हैं? आलिंगन करना चाहते हैं। तो मतलब गाय का इतना अधिक प्रेम अपने बछड़े से है, उससे भी अधिक या उसी के समान भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान खीर की चोरी करते हैं और फाइनली पुजारी ढूंढ लेता है माधवेंद्र पुरी को। माधवेंद्र पुरी सोचते हैं भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, दंडवत प्रणाम करते हैं पुजारी के सामने। पुजारी कहते हैं आप तो इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो, भगवान ने खीर चुराई है। यहाँ वृंदावन में भगवान माखन चुराते हैं लेकिन यहाँ क्या चुराया? खीर। तो माधवेंद्र पुरी ने उस खीर को लिया, पुजारी उनको दंडवत करते हैं, माधवेंद्र पुरी उस खीर को खाते हैं और मटके के टुकड़े टुकड़े करके अपने वस्त्र में बांध के रखते हैं। उसी को भी नहीं फेंकते, उस मटके के एक एक टुकड़े को भी माधवेंद्र पुरी धीरे धीरे करके खा डालते हैं। तो भगवान को यहाँ उनको क्यों? तो भगवान का तब से नाम पड़ा गोपीनाथ का खीर चोरा गोपीनाथ। क्या नाम पड़ा? खीर चोर गोपीनाथ, सरल भाषा में। लेकिन देखा जाए भगवान को चोर क्यों कहा वहां? क्योंकि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भोग उनकी वस्तु है, लेकिन भोग खाने के बाद भगवान ने क्या चुराया था? प्रसाद को चुराया था। क्या चुराया था? और प्रसाद किसकी संपत्ति है? भक्तों की संपत्ति है, जिसके कारण से भगवान को क्या बोला गया? चोर कहा गया। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने सोचा इस गांव में सबको पता चलेगा कि मेरे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है तो सारे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा आदर सम्मान करेंगे, मुझे प्रणाम आदि करेंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी उसी रात्रि को उस स्थान से चले जाते जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी पहुंचते तो ये पहुंचने से पहले ये उस जगन्नाथपुरी में पहुंची थी, माधवेंद्र पुरी की महिमा पहले ही पहुंची थी। भक्ति से प्राप्त होने वाला जो प्रतिष्ठा है वो भक्त से बहुत आगे दौड़ता है, भक्त जाने से पहले वो सारा जो प्रसिद्धि है वो पहले पहुंच जाती है। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां के सारे भक्तों ने माधवेंद्रपुरी की सहायता की, सारे भक्तों ने मिलकर माधवेंद्रपुरी के लिए चंदन अरेंज किया, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके किस लिए आ रहे थे? चंदन के लिए, गोपीनाथ की गोपाल की सेवा के लिए। तो वो जगन्नाथपुरी से चंदन आदि लेते हैं, कर्पूर लेते हैं, दो तीन सेवक उनके साथ दिए जाते हैं। और उस समय सब जगह मुस्लिमों का शासन था, चंदन आदि लेना, टैक्स पे करना बहुत कष्टदायक था, और वो भी ओडिशा से वृंदावन ले आना अत्यंत कठिन। तो माधवेंद्रपुरी फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं गोपाल की सेवा के लिए और चंदन लेकर आते हैं रास्ते में। फिर आते आते फिर से इस गोपीनाथ जो विग्रह थे रेमुना में, रेमुना जो टाउन है वहां फिर से निवास करते हैं। तो वहां फिर भगवान तीसरी बार उनके स्वप्न में आते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि हे माधवेंद्र पुरी, तुम्हें इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो गोपीनाथ है और मैं वृंदावन में जो गोपाल हूं, दोनों क्या है? सेम है। आप यहाँ ही गोपीनाथ के लिए चंदन घिस के उनके शरीर में लगाओ तो मुझे क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, और वृंदावन में मेरा सारा ताप दूर हो जाएगा। तो इसी कारण से माधवेंद्रपुरी फिर वहां कई भक्तों को लगाकर चंदन घिसते हैं और चंदन घिसवाते हैं घिसते हैं और तब से फिर भगवान कृष्ण को गोपीनाथ को इस समर सीजन में विशेष रूप से इस गर्मी के दिनों में चंदन का लेप लगाया जाता है और भगवान आनंद से इस चंदन को स्वीकारते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से ये सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये उदाहरण है माधवेंद्रपुरी का कि कितना अधिक प्रेम एक भक्त का भगवान की सेवा के प्रति है। क्योंकि भगवान हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। भगवान को इस संसार में कोई चीज कमी नहीं है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम द्वयम योमे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो हमसे भक्ति की भावना चाहते हैं, सेवा की भावना चाहते हैं। तो ये हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस महीने में, जब यहाँ आकर हम क्या करें, चंदन को अपने हाथों से घिसे। क्योंकि ये चंदन कौन धारण करेगा? गोविंद देव धारण करेंगे। आप सोचो, भगवान जब वृंदावन को पहले बार छोड़कर अक्रूर के साथ मथुरा आए थे, जब मथुरा आए तो भगवान मथुरा के बाहर निवास कर रहे थे, तो वो कभी शहर में नहीं आए थे। गांव को छोड़कर पहली बार भगवान 11 साल की आयु थी जब उन्होंने वृंदावन छोड़कर मथुरा आए थे। तो मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया अपने ग्वाल सखाओं के साथ, बलराम आदि के साथ प्रवेश कर करके अलग अलग स्थानों में गए, तो उनको एक युवती नजर आई और उसका नाम क्या था? कुब्जा। तो कुब्जा को जब देखा भगवान ने, तो उन्होंने थोड़ा सा बोला, भगवान ने कहा कि हे सौंदर्यवती, आप इतने तेजी से कहां जा रही हो और अपने हाथों में क्या लेके जा रही हो? तो कुब्जा ने क्या कहा? मैं तो कंस के महल की ओर जा रही हूं और मेरे हाथ में क्या है? चंदन है। हाँ, तो जैसे ही भगवान ने कहा आप मुझे अर्पित कर सकती हो चंदन, तो उसने कोई और चीज नहीं सोची। उसने नहीं सोचा कि वो कंस मुझे मार डालेगा या कुछ और करेगा। उसने सोचा कि ये चंदन के वास्तविक भोक्ता कोई है, तो वो कौन है? कृष्ण है। उसकी छोटी सी सेवा से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, कुब्जा के उस सेवा से। और कुब्जा को उसके बदले में वास्तव में सर्वाधिक सुंदर युवती बनाते हैं। तो वास्तव में इस संसार में हमारे साथ कुछ चीज जा सकती है, तो एक ही चीज जा सकती है, भगवान की सेवा। और कोई चीज हमारे साथ नहीं ले जा सकते। आप कहोगे कि घर में एक सुई ले जा सकते हैं आप अपने साथ? अभी अर्थ पे आया था, है ना, जैसे नेपाल में है, ऐसे नहीं कि हमारे साथ नहीं होगा। नेपाल में हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं। इसलिए तो जब युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्योंकि द्रौपदी को जब बहुत प्यास लगी, जब ये लोग वनवास में थे, तो उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए। तो अभी श्री का हट है, तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन आप चले जाओ जल लाने के लिए। अर्जुन पहुंचते एक जलाशय के किनारे, वहां एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर कुबेर का एक फॉलोवर अनुचर था यक्ष। उसने अर्जुन को कहा कि पानी लेने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी पानी ले लो, नहीं तो मूर्छित हो जाओगे। अर्जुन ने कुछ सोचा नहीं, पानी पहले पी लिया और लेकर वो मूर्छित हो जाता है। फिर भीम नकुल सहदेव सबकी स्थिति वही हो जाती है, वहां सारे मूर्छित होते हैं। फाइनली युधिष्ठिर पहुंचते हैं कि अभी तक पानी लाने के लिए गए चारों आए नहीं। युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो देखा चारों मूर्छित है। तो उस वृक्ष के ऊपर जो यक्ष था, उन्होंने कहा युधिष्ठिर मेरे कुछ प्रश्न है। तो 100 प्रश्न पूछे, ये महाभारत में आते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, किम आश्चर्य, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आचार्य अतः परम्। कि इस पृथ्वी में, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने आंखों से देख रहा है कि रोज व्यक्ति मर रहा है, देखते हुए भी, सुनते हुए भी कभी ये नहीं सोचता, उसको लगता है कि मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं, मेरे लिए मृत्यु नहीं हूं। यही युधिष्ठिर महाराज ने कहा। इस संसार का यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर वास्तव में मृत्यु एक टंगी हुई तलवार हमारे गर्दन में सदा खड़ी है, वो कभी भी किसी भी क्षण कोई हमें मिस कॉल, कोई कॉल नहीं आ सकता, कोई मैसेज नहीं आ सकता, अब कोई व्हाट्सएप नहीं आ सकता, कुछ नहीं, कभी भी ये टंगी हुई तलवार नीचे गिर सकती है और इस शरीर को छोड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले किसी चीज को इकट्ठा करना है अपने जीवन में, तो एक ही चीज है, भगवान की सेवा। और भगवान की सबसे सरल और सर्वोत्कृष्ट सेवा क्या है? प्रभुपाद कहते हैं सिंपल एंड सबलाइन सर्विस। वो क्या है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। कि भगवान को अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान की सेवा की शुरुआत होती है जीवा से। जीभ से हम दो कार्य करते हैं, एक क्या करते हैं, खाते हैं, और दूसरा बोलते रहते हैं। तीसरे खाना है तो कृष्ण प्रसाद, और बोलना है तो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो भारत में कितना सरल है, विदेशों में भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है। इवन लंका में विभीषण रहते हुए भी किसका भक्ति कर रहे थे, राम का। किसके नामों का उच्चारण कर रहे थे? एक बार रावण को लगा कि जाता हूं विभीषण के घर में क्या कर रहा है देखने के लिए। तो रावण पहुंचे थे कि नहीं, उन्होंने देखा विभीषण के घर में सारे दीवारों में एक ही नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ था? राम राम राम। बोलिए जोर से,
राम राम राम।
तो अभी वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ये विभीषण, क्योंकि इसे क्या देखते हैं कि अपना घर, अपना वातावरण ऐसा बनाओ कि जिससे किसका स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन है। तो यहाँ वो पहुंचे और उन्होंने देखा ये क्या है, सारे दीवारों में राम राम राम, मेरे शत्रु का नाम। तो इन्होंने पूछा, विभीषण मेरे घर का अन्न खाते हो लेकिन गुण किसका गाते हो? राम का। तो उन्होंने पूछा, बताओ ये किसका नाम है, ये क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा, आपसे मेरा इतना प्रेम है, ये वास्तव में आप ही का ही नाम है। तो उन्होंने कहा, थोड़ा एक्सप्लेन करो इन डिटेल। तो विभीषण ने कहा कि भ्राता श्री, ये जो रा है ये किसका है? रावण। और जो माँ है वो किसके लिए है? मंदोदरी। किसके लिए? तो बहुत चलाक थे विभीषण, क्या थे, बहुत चलाक थे। तो इस प्रकार से चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम ऐसी स्थिति में तो है नहीं कि जहां रावण का राज्य है। कम से कम अपने घर में किसका नाम ले सकते हैं आनंद से? कृष्ण का नाम ले सकते हैं। और भगवान का नाम ही वास्तव में असली धन है जो हमारे साथ हम ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमें व्रत लेना चाहिए कि माधवेंद्रपुरी ने भगवान की इतनी बड़ी सेवा की, तो हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं अपने जीवन में सरलता से। और वो किस प्रकार से? भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन के चंदन यात्रा महामहोत्सव के श्री श्री राज गोविंद देव के श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।